तत्वार सूत्र लेक्चर नंबर 17 प्रकाशिका के माध्यम से सत संख्या आदि की बात
सर्वार्थ सिद्धि,
उसके बाद अभी हम सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में से देख रहे हैं।
हमने जो सूत्र पढ़ा था ना, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कार अंतर भाव और अल्प, उसमें से तो हमने गुण स्थानों पर ये घटित करके देखा था। एक एक गुणस्थान सत है बताई थी, फिर उसकी संख्या बताई, अब क्षेत्र बताने जा रहे हैं। तो क्षेत्र प्ररूपण अभी चलेगा। तो क्षेत्र दो प्रकार से, सामान्य से गुणस्थानों का और विशेष से मार्गणों का। हर जो कोई बात आती है उसमें गुणस्थान पर और मार्गणा स्थान पर घटित करते हैं। अभी मिथ्या, अभी गुणस्थानों में एक एक गुणस्थानों का क्षेत्र बताया। क्षेत्र का अर्थ होता है उस गुणस्थान वाले जीव लोक के कितने भाग में रहते हैं। यहाँ तो लोक का पूरा लोक है कि लोक का असंख्यात भाग है कि लोक का संख्यात भाग है, इतना ही कहना है, तो ज्यादा नहीं,
पूरा लोक है,
पूरा लोक हो सकता है। तो कहते कि मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ है, तो पूरे लोक है। तो उनका क्षेत्र कितना है, पूरा लोक है, सर्वलोक है।
ये अनेक जीवों की अपेक्षा बात चल रही है,
यानी टोटल मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र, एक ही नहीं है तो पूरे ही लोक में तो सारे मिथ्या दृष्टि है, तो उनका क्षेत्र पूरा लोक है। सासाधन सम्य दृष्टि आदि वहां से लेकर अयोग केवली तक वो कहाँ रहते हैं, तो लोक के असंख्यात लोग। आप कह दिए अयोग केवली तो बहुत कम है और सासाधन वाले ज्यादा है, परंतु सासाधन वाले जीव कौन है, तो संगी पंचेंद्रिय जो सम्यकों से भ्रष्ट होकर अभी अभी सासाधन में आए हैं, वो कहाँ रहते, तो लोक के असंख्यात विभाग, उनका रहने का अपना ठिकाना कहाँ है, तो लोक का असंख्यात। सहयोग केवली एक तो रहने की अपेक्षा लोक का असंख्यात, और समुद्र की अपेक्षा प्रतर की अपेक्षा से असंख्यात बहुभाग, क्योंकि वात वाले को छोड़कर, और लोकपुरण की अपेक्षा पूरा लोक। अब ये तो हो गया गुणस्थान, अब मार्गणाओं में बता दें तो गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति में, तो सभी पृथ्वियों में नारकियों के जो चारों गुणस्थान में लोक का असंख्यात होगा। तिरंचों में तिरंचों का मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयता संयत तक गुणस्थानवत क्षेत्र है। जैसे गुणस्थान में देखा हमने मिथ्या तथा तो पूरा लोक है वगैरह, उसमें भी घटित होगा। तिरंचों में ही पूरा लोक घटित होगा, गति की अपेक्षा तिरंचों में पूरा लोक घटित होगा, क्योंकि एक एक ये सारे तिरंच घटित है। और बाकी सासाधन आदि आगे वाले पांचवें गुणस्थान तक के तिरंच लोक का असंख्यात होगा। मनुष्यों में वो भी लोक का असंख्यात होगा।
लोक का असंख्यात भाग कहते हैं, लोकाकाश में जितने प्रदेश है उसके असंख्यात भाग
का, उनका अपना रहने का स्थान कहाँ है, तो मनुष्य क्षेत्र जो है 28 द्वीप जिसमें हम कहेंगे 45 लाख योजन पूरे 343 गणराज्यों की अपेक्षा वो असंख्यात्वा भाग है, इसलिए उसको असंख्यात्व भाग। अब संयुक्त केविली का तो हमने देखा था लोक असंख्या दो भाग और असंख्य पूरा लोक भी हो सकता है, देवगति में वो भी लोक का असंख्या भाग। अब इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा एक इंद्रिय पूरे लोक में और विकलत्र लोक के असंख्या के भाग, पंचेंद्रिय वो भी लोक के असंख्या के भाग में। अब काय मार्गना की अपेक्षा, काय मार्गना की अपेक्षा क्या कहेंगे, ये पांचों ही कायिक वाले पूरे लोक में सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र होते हैं और त्रसकायिक कहाँ है तो लोक के असंख्या। योग मार्गना में वचन और मनोयोग वाले लोक के असंख्या क्योंकि वो पंचेंद्रिय और काय योग वाले मिथ्यादृष्टि पूरे लोक और बाकी ऊपर के गुणस्थान में अपने अपने यानी लोक का असंख्या का भाग। सेवक केवरी में पूरा लोक, वेद मार्गना में स्त्री और पुरुष वेद वाले वो तो पंचेंद्रिय होते तो लोक के असंख्या के, और जब हम वेद वाले लेंगे तो नौवे गुणस्थान तक के जीव
लोक के असंख्या।
नपुसक वेद का क्षेत्र पूरा लोक, कषाय मार्गना की अपेक्षा से पूरा क्रोध मान माया लोक सभी पूरे लोक। ज्ञान मार्गना में मति और शुद्ध अज्ञान वाले पूरे लोक, मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान कितना होगा तो संगीत पंचनीय में होता है आगे का लोक के असंख्या लोग। तो बाकी लोक की असंख्या थे और केवली का जो हमने समुद्र की अपेक्षा लगा लिया। अब संयम मार्गना में सामायिक है चेदों पर स्थापना है परिहार विशुद्धि ये सब संयम ही होंगे तो लोक का असंख्या का भाग कहेंगे। यथाख्यात में तो हम केवली की अपेक्षा लगा सकते हैं, संयता संयत और असंयत में असंयत तो पूरा लोक है, संयता संयत लोक का असंयत। अब दर्शन मार्गना चक्षु दर्शन वाले लोक का असंख्या और अचक्षु वाले पूरा लोक।
समझाए छे नहीं पूछ नहीं तो पूछना हो
ना। अवधि दर्शन वाले वो भी अवधि ज्ञान के लिए से इन्हें लोक का असंख्या था। केवल दर्शन वाले एक तो असंख्या का भाग असंख्या बहुभाग और पूरा लोक तीनों ही उसमें लेशा में कृष्ण नील कपोत वाले पूरा लोक, पीत पद्म लेशा वाले लोक का संख्या, शुक्ल लेशा वाले बारहवें गुणस्थान तक तो लोक का संख्या था भाग और तेरहवीं की अपेक्षा वो समुद्र की अपेक्षा लगता। भव्य मार्गना में वो जो 14 गुणस्थानों में जो बताया वैसा सब में घटित होगा यानी भव्य भी पूरा लोक कहेंगे कि एक इंद्रिय की अपेक्षा से भव्यों का तो पूरा लोक कहेंगे। सम्यक तो मार्गना की अपेक्षा से शायिक समय दृष्टि जो है तो गुणस्थान के अपेक्षा से बताएंगे।
नहीं इसमें भी हम लोक का संख्या
तो
संपूर्ण लोग लिख सकते हैं।
शायिक में तो समुद्र की भी आ
हाँ।
और औपशमिक वाले के और वेदक वाले के लोक का संख्या तो। अब संघी मार्गना में संघियों का क्षेत्र लोक का संख्या था, असंघी का पूरा और दोनों से रहित सहयोगी में जो हम समुद्रात लगाते हैं। आहार के अपेक्षा से आहारकों का जैसे मिथ्या दृष्टि का पूरा लोक है और आगे वाले का लोक का संख्या था सहयोग में लोक का संख्या था और
Thank you.
उस समय वो आहार है क्या? जब प्रतर लोक पूरण करते हैं तो वो आहार नहीं है, अनाहारक है ना, पूरा लोक है ना असंख्य भूभाग है। जब हम केवली समुदाय की अपेक्षा से आहार कब तक है? दंड में आहार है, कपट में आहार है, प्रतर और लोक पूरण में अनाहारक है, तो लोक का असंख्य भूभाग और पूरा लोक नहीं लेना आहार। अनाहारक कहेंगे तो ले सकते हैं,
तो उसको कितना बताना आहारक में?
आहारक में तो हम दंड की अपेक्षा से, दंड और कपाट की अपेक्षा से लोक का संख्या तो हम कहेंगे। 14 है ना, 14 घन राजु है और टोटल लोक 343 घन राजु है, तो वो संख्या तो अभाव हो सकता है। यहाँ क्या लिखा है मैं पढ़ूंगी, अनाहारक में यहाँ क्या लिखा मैं पढ़ूंगी। आहारक के अनुवाद से आहारक का मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषाय पर्यंत गुण स्थान है और संयोग केवली का लोक के असंख्यात भाग है, परंतु संख्या का भाग भी होता है दंड और कपाट में। अब अनाहार कपाट में दंड में नहीं होगा, कपाट में होगा, क्योंकि दंड में वो तो 12 अंगुल वाला होता है ना, 12 अंगुल वाला, परंतु कपाट में तो ऐसा होता है। अब अनाहारक के अनाहारक में किस किस को लेना? पहला, दूसरा, चौथा और संयोग केवली और अयोग केवली, तो पुनस्थान के समान है। यानी प्रतर की अपेक्षा लोक का असंख्यात बहुभाग और पूरण की अपेक्षा पूरा लोक और अयोगी में तो लोक का असंख्यात, इसको कहते क्षेत्र। क्षेत्र तो समझना आसान है क्योंकि वो तो वर्तमान में वो जीव कहाँ रहते हैं उसकी अपेक्षा क्षेत्र कहते हैं। जब स्पर्शन की बात है तो ये तो त्रिकालवर्ती जीवों की बात आती है। जब हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि जीव, त्रिकालवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव या त्रिकालवर्ती समय दृष्टि जीव, अब यहाँ केवल कहाँ रहते वो नहीं समझना, वो कहाँ रहते हैं, मर कर मारणांतिक कहाँ कहाँ करते हैं, उपपाद का अर्थ होते जन्म का पहला समय, यानी शरीर छोड़ा और वहां तक आत्म प्रदेश फैले है विग्रह गति में, तो उसको भी वहां काउंट करना, उसको उपपाद कहेंगे, तो वो पूरा क्षेत्र उसको काउंट करना। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जीव ने मारणांतिक किया होगा या देवों में तो विहार करके कहां जाते हैं, ये सभी बातें वहां आती है वैकिरण की अपेक्षा, इसको कहेंगे स्पर्शन। तो यहां बताएंगे तो ख्याल में आएगा क्या है। तो रोग पूरा कितना है? तो 343 घन राज्य, वो सब इसमें है। तो एक तो होता है स्वस्थान अपेक्षा, स्वस्थान यानी जो हमने क्षेत्र देखा वही स्वस्थान का उनका स्पर्शन कि कहाँ रहते हैं उसको स्वस्थान कहेंगे। दूसरा है विहार व स्वस्थान, विहार कर करके कहाँ जा सकते, जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं और विहार करके जाते हैं ना आप अमेरिका, तो ये विहार का क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसको, तो देव कहाँ कहाँ विहार करते उसकी बात करेंगे वहां। देखो विहार अपेक्षा एक होते हैं मारणांतिक समुदाय कहाँ कहाँ करते, जैसे पंचेंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं तो लोग के असंख्या से भाग मारणांतिक करके कहाँ जा सकते हैं अरविंद भाई, क्योंकि एक इंद्रिय में ही मरकर एक इंद्रिय में जो जाने वाले हैं, आप कहेंगे एट ए टाइम मरकर जाने वाले थोड़े हैं, पर यहाँ तो अनादि से अनंत काल तक के पंचेंद्रिय जीव जो तो लोग के एक एक प्वाइंट पर कभी ना कभी किसी न किसी तो मारणांतिक किया होगा ना, उसको कहेंगे स्पर्श। तो ये स्पर्श या उपपाद की अपेक्षा लेना है, यानी जन्म लेते समय वो विग्रह गति से जाते हैं उसकी अपेक्षा भी वहां लगती है, तो इसमें भी गुणस्थानों में घटित करेंगे मार्गना स्थानों में स्पर्शन जो है गुण स्थानों पर और मार्गणा स्थानों पर घटित कर रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन कितना है? तो पूरा लोक, क्योंकि उसका वर्तमान का क्षेत्र ही पूरा लोक है, तो स्पर्शन तो होगा ही होगा। सासादन में अभी इसमें तो बहुत विस्तार है, तो सासादन वाले कहाँ रहते तो लोग कैसे विहार करके अपेक्षा ने देवों में लगाना कि देव गए हैं विहार करके और उनके सासादन वहां हो सकता है कि नहीं हो सकता। वहां जाके उन्होंने अक्षमी समय प्राप्त किया और वहां उसमें से छूटकर सासादन में आ गए, यानी देव गए थे नीचे तीसरे नरक तक और वहां उनके सासादन हो सकता है, या ऑन द वे उनके वहां से निकले हैं या जा रहे वापस या वहां जा रहे और उसके सासादन में जा रहे, ये सब हो सकता है। तो ये पूरा ही उसका जहाँ उनके अपने स्वर्ग से लेकर नीचे तीसरा नरक है, दो राजू नीचे और ऊपर कहाँ तक के जीव विहार करेंगे नरक में? आनत प्राणत आरणच्युत सहस्रार तक के ही नीचे तीसरे नरक तक जाते, तो ऊपर छह राजू और नीचे दो राजू,
फिर से बारहवें स्वर्ग तक के जीव,
स्वर्ग तक के जीव तीसरे नरक तक जाते हैं। ऊपर आनत प्राणत आरणच्युत जो है वो तो नीचे नरकों में नहीं जाएंगे परंतु मध्य लोक तक आएंगे, उनकी बात गिनेंगे तो हम छह राजू तक गिनेंगे। तो ये पूरा ही राजू, एक राजू का एक राजू वाला जो स्क्वायर है वहां तक वो नीचे जाते हैं, तो वो पूरा 8/14 त्रसन आदि का इतना लीले है, इतना वो पूरा उसका स्पर्शन फैला है। कभी न कभी किसी न किसी जीव ने वो पूरा क्षेत्र व्यापा हुआ है, तो उसको वो मापना है। 343 राज्यों में से वो 8/14 हो गए ना उनके। अभी वो वहां जाके मारणांतिक कहाँ करते हैं क्या करते हैं इसकी अपेक्षा बहुत सारी बातें लगाई हम उसके विस्तार में नहीं, क्योंकि एक एक पुस्तक इस पर है और हम पूरा यही बताना चाहते हैं। यानी ऐसा भी लेते हैं, अभी वो कोई देव वहां गया है मिथ्या दृष्टि है और एक इंद्रिय में मारणांतिक करने वाला है, तीसरे नरक तक गए थे और वहां मारणांतिक किया, तो मारणांतिक कहाँ तक कर सकते हैं? तो पृथ्वियों में करेंगे, पृथ्वी कायिक में करेंगे, तो डिस्टेंस वाली नीचे की पृथ्वियों में नहीं जाते, तो ऊपर की आठवीं पृथ्वी कितनी है? मध्य लोक से तो 7 राजू ऊपर है और ये नीचे 2 राजू नीचे गए हैं, तो 9/14 इतना ले लेना होगा मारणांतिक किया। इस तरह से सोचना है ये सब, विहार करके कहाँ जाते हैं, मारणांतिक करके कहाँ जाते हैं, वैकरिक समुदाय करके कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब इसमें गुण स्थानों में और मार्गणाओं में लगा लेना है। जैसे एक इंद्रियों का स्पर्शन पूरा लोक है, इंद्रियों का मारणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक कहेंगे या उपपाद की अपेक्षा पूरा लोक कहेंगे, एक इंद्रिय से मरकर इंद्रिय में आने वाले वो भी लोक के किसी भी कोने से आ सकते हैं, तो वहां पर भी घटित होगा। यही उन्होंने फिर सभी मार्गणाओं पर घटित किया, सभी लेशा आहार वगैरह पर। अब ये हो गया स्पर्शन, समझ में स्पर्शन किसको कहना और कैसा उसको सोचना, उसका उत्तर कैसे निकालना। अब काल की बात कहते हैं, स्पर्शन के बाद काल है ना, काल और अंत, तो काल को कहेंगे। तो गुण स्थानों में और मार्गना स्थानों में, अभी उसमें भी काल जब सोचते हैं तो नाना जीव की अपेक्षा काल और एक जीव की अपेक्षा, ये दो उसमें जीव जैसा। तो आपको बताना है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा कितना काल, ہے یعنی سروتر ہمیشہ ہی, کیونکہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی کہ آنند جو متیا متیا تو گنستان میں ہو گئی ہوں گی, تو نانا جی ان کی اپیکشا سروکار. تو اس میں کہیں گے ابو بھی ان کی اپیکشا انادی انت ہے, وہ بھی ان کی اپیکشا انادی سے متیاتوں میں تھے اس کا انت آ گیا تو انادی سانت ہے. یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا نا کہ سمیہ درشٹی ہوئے اور پھر متیاتوں میں آئے تو سادی ہوا پھر وہ سمیہ درشٹی ہونے والے تو سانت ہے تو سادی سانت ہے. تو جب متیاتوں کا کال آدی کی بات ہے تو سادی سانت کال کی بات آتی, یعنی کم سے کم متیاتوں میں رہیں گے سادی سانت والا کال تو کتنا ہوگا ایک انتر آپ سمے کو پراپت کر سکتے اس لیے انتر ہوگا. اور لمبے سے لمبا سادی سانت کال متیاتو کا بڑے سے بڑا کال کتنا ہے ارد پر تو کچھ کم کر دینا اس میں کچھ کم, کیونکہ اتنے کال میں تو موکش پراپت ہی کریں گے. تو یہ ہے کال نانا جیون کی اپیکشا اور ایک جیو کی اپیکشا. نانا جیون کی اپیکشا تو بتا چکے ایک جیو میں وہ سب گھٹت ہوگا انتر مورت ہے یا جو لمبا کال ہے وہ کس اپیکشا سے ایک جیو کی اپیکشا سے بتا دیں. ابھی ساسادھن کا دیکھتے ہیں ابھی نانا جیون کی اپیکشا نہیں ہو تو ہو سکتا ہے ایک سمے کے لیے کوئی آئے اور ادھک سے ادھک لگاتار کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ساسادھن میں رہے گا نانا جی تو کتنے کال تک ایسا ہو سکتا ہے. تو پلے کے اسنکھیا تو بھاگ پر بعد میں ایسا ہوگا ہی کہ ایک بھی جیو ساسادھن میں نہیں ہے چاروں گتی وہ تو ہم انتر میں گٹی کریں. یہ دو گنستان ایسے ہے کون سا دوسرا اور تیسرا جیسے متیاتو کا نانا جی ان کی اپیکشا نرنتر کال ہے ہمیشہ ہے ویسا ان دو میں نہیں. چوتھا گنستان وہ نرنتر, پانچواں نرنتر, چھٹا ساتواں نرنتر, شرینی میں بھی پھر انتر پڑے گا وہ تو انتر کے پرکرن میں دیکھیں. تو یہ کال کی بات ہے. تو ابھی ایک جیو کی اپیکشا دیکھتے ہیں ساسادھن کا کال کتنا ہے. جگن نے ایک سمے اتکرشٹ چھ, تیسرے گنستان کا انتر, چوتھے گنستان کا جگن کے کال انتر مورت, کیونکہ انتر مورت میں یا تو متیات میں گیا یا اوپر چلا گیا, اور اتکرشٹ کال چوتھے میں رہنے کا.
بولو بولو.
دیکھو سادھک تینتیس ساگر کیوں, وہاں تینتیس ساگر میں جانے والے کون ہیں منی راج, ان کا تو چھٹا ساتھا گنستان تھا یا شرینی والے تھے, وہاں جانے پر چوتھا گنستان شروع ہوا. تینتیس ساگر تک وہاں چوتھے میں رہ رہا ہے, وہاں گربھ میں آئے تو آٹھویں سال تک تو ان کا چوتھا ہی گنستان رہے گا, بعد میں ہو سکتا ہے کہ منی راج ہوئے پانچواں, یا ہو سکتا ہے کہ چوتھے لمبے کال تک چلے اس لیے وہ شادی کے لیے
ایک کروڑ روپے.
تو یہ تو ایسے گنستانوں کا لینا, پانچویں میں بھی پانچواں گنستان کہاں ہوتا ہے, چوتھا گنستان تو دیووں میں بھی ہوتا ہے نارکیوں میں بھی ہوتا ہے اس لیے اس کی اپیکشا لگائیں. پانچواں گنستان تیرنج اور منشو کرم بھومی, تو کروڑ پورو کی آیو ہے اس میں کچھ کم کر دو, منشو میں آٹھ سال کم کر دو اور تیرنجوں میں انتر مور سمورچھن کی اپیکشا اس طرح سے اس سب میں لگا لیں. باقی آگے کی گنستانوں کے کال معلوم ہے, چھٹا ساتواں انتر مورت, انتر مورت کے اوپر کی بھی انتر مورت, سہیوگ کیولی میں کچھ کم کروڑ. اب یہ تو انہوں نے بتایا, اب یہ مارگناؤں میں کال لگائیں گے. مارگناؤں میں جب کال لگائیں گے تو گتی مارگنا میں چاروں گتی انادی سے یعنی ہمیشہ رہے گی, تو نانا جی ان کی اپیکشا سب کال لگے. ایسے کون سی پریا ہے کہ جہاں ہمیشہ نہیں پائے جائیں گے آپ کو معلوم ہے
کیا, کیا نہیں پائے جائیں گے
جی, اس میں ہمیشہ ہو گئے ہی ایسا نہیں, ایک اندریا میں ہمیشہ ہو گئے, دو اندریا میں ہمیشہ ہو گئے, دوسری کائک میں ہمیشہ, ایسی کون سی بات ہے کہ جہاں جیو ہمیشہ نہیں ہوگے نانا جی, मनुष्य में लभ्य पर्याप्त ने देखे थे वो बीच में उनमें अंतर भी पड़ सकता है। अब ये आगे बढ़ते हैं, अभी उसमें लगातार रहने का कितना काल है वो सब इसमें बताया। जैसे मनुष्य मरकर मनुष्य मनुष्य मरकर मनुष्य मनुष्य मरकर वो 47 पूर्व कोटि वगैरह हो गए, ये हमने बहुत बार उसकी चर्चा की थी। ऐसे गुणस्थानों में बताया, यानी वो हर एक मार्गना पर भी घटाया, काय मार्गना यानी एक इंद्रिय में रहने का लगातार काल कितना है, लंबे से लंबा असंख्यात पुतल गई पृथ्वी काय वगैरह में एक एक में वो असंख्यात। तो ये हर एक में वो ऐसे सब विस्तार से बताया है, यानी वेद मार्गणा में कषाय मार्गणा में ज्ञान तो कषाय में तो कहेंगे ना, एक एक कषाय में अंतर्मूत रहता है, पलटता रहता है। योग में भी जिसको दो या तीन योग है उनका पलटता है, एक इंद्रियों में तो काय योग है, औदारिक मिश्र के बाद औदारिक हुआ वही पृथ्वी का एक होगा वो 22,000 वर्ष वाला, तो वो एक इंद्रिय का खाली औदारिक का योग ही रहेगा। द्विंद्रिय और त्रिंद्रियों में सॉरी द्विंद्रिय और आगे वाले में योग पलटते रहते हैं, अंतर्मूर्त में पलटेगा। अब ये तो हो गई काल की बात, ये सभी मार्गणाओं पर उन्होंने घटित करके दिखाया। अभी अंतर में क्या लेना, किसी एक गुणस्थान में जीव था वहां से अन्य गुणस्थान में चला गया, वापस लौटकर उसी गुणस्थान में आने के लिए कम से कम काल कितना है और अधिक से अधिक कितना है। तो जो कम से कम इसको कहें विरह काल, उसको अंतर कहते हैं। तो कम से कम अंतर कितना है, अधिक से अधिक अंतर कितना है। जैसे मिथ्यात्व का देखते हैं, मिथ्यात्व में से कोई एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे, कोई सम्य दृष्टि हुआ उसका मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया, अब लंबे काल तक सम्यक्त्व में रहेगा या अन्य गुणस्थानों में रहेगा और वापस लौट कर मिथ्यात्व में आएगा, तो मिनिमम तो अंतर्मुक्त में आ सकता है और अधिक से अधिक लंबा काल चला तो देखो 66 सागर रहा, एक अंतर्मुक्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व में आया, फिर 66 सागर फिर मिथ्यात्व में आया, दोनों और कुछ कम कर देना, इसको कहेंगे अंतर। सम्यक्त्व का अंतर कैसा होगा, मिनिमम अंतर और मैक्सिमम कुछ कम करोड़ गए कुछ कम
अर्ध पुटगल पर।
सम्यक्त्व का अंतर करते हैं वो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुआ है और लगातार मिथ्या तो नहीं रहा, अर्ध पुटगल इस तरह सोचना है। अब शासादन में देखते हैं, एक बार शासादन प्राप्त हुआ
जगन में
तो उसका मिनिमम अंतर चाहिए, मिनिमम अंतर चाहिए यानी दोबारा फिर दोबारा उसको शासादन प्राप्त होना चाहिए। कब होगा, कम से कम काल कितना जाएगा जब उसको दोबारा शासादन प्राप्त होगा। आप कुछ कह रहे
हो, नहीं नहीं
नहीं क्यों, हाँ देखो शासादन में कौन आएगा, औपचारिक समय दृष्टि गिर कर आएगा, तो एक बार शासादन में आया है मिथ्या तो में चला गया, दोबारा औपचारिक प्राप्त करने के लिए पल्ले का असंख्य तो भाग लगता है। बीच में वेदक हो सकता है पर वेदक वो शासादन में नहीं आता,
ये तो शासादन के जगन निकाल की बात हुई, अभी
अंतर की
अंतर अंतर अभी उत्कृष्ट अंतर की बात करना दिव्य को।
नहीं वो काल बता रहे
उत्कृष्ट,
मैंने एक बार शासादन में आया बीच में आया ही नहीं, हाँ कुछ कम अर्थ वो कुछ कम में वो
इतना अच्छा संप है, इतना अच्छा संप है वही तो तकलीफ है। मैंने प्रेरणा जी से पूछा था कोई बात नहीं, अच्छी बहुत अच्छा कांग्रेचुलेशन। नहीं क्या है, खाली सासाधन में ही थोड़ी सी बात ध्यान में रखने की, एक बार सासाधन होने के बाद अर्लीस्ट सासाधन कब होगा, तो असंख्यात वर्षों के बाद इतना ध्यान रखना, और बहुत ही ध्यान में रखना है तो पल्ले के असंख्यात में बात, वह भी असंख्यात वर्षों का ही काल है। लेकिन उत्कृष्ट अंतर कब होगा, कि जैसा हमने समझा कि कोई जीव ने सम्यक तो प्राप्त किया, अभी बहुत काल तक वो सम्यक तो प्राप्ति नहीं करेगा, तो कितने काल तक इस संसार में भटकेगा। हम कहते अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन जो उसका समय आया, उस समय भी वो क्या हो सकता है, औपशमिक सम्यक की ही प्राप्ति करेगा, और उस समय भी ऐसा भी खतरा है तो सासाधन में आ जाए, तो वो उत्कृष्ट अंतर होगा। ये गड़बड़ी सिर्फ अपने को सासाधन गुणस्थान में ही जरा ध्यान देनी है, बस उधर ही होती
तो
है।
उन्होंने बहुत विस्तार से बताया हर गुणस्थान में, हर मार्गणा में, एक जीव की अपेक्षा अनान जीव की अपेक्षा, ये पूरा जिस कभी हम क्या अंतर किसको कहना है ये तो समझ में आया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, भाव को देखेंगे। भाव भी दो प्रकार, गुणस्थानों के और मार्गणा से। तो सामान्य से मिथ्या दृष्टि तो औदयिक भाव है, सासाधन समय दृष्टि के पारिणामिक भाव है। क्यों? दर्शन मुख की अपेक्षा, कि उसकी कोई अन्य वहां अवस्था नहीं होती। सम्यक मिथ्या दृष्टि के क्षयक्षमिक भाव, और असंयत के समय दृष्टि है ना, वहां औक्षमिक होगा, क्षयक्षमिक होगा, क्षयिक होगा, असंयतपना है वो तो औदयिक भाव। संयता संयत प्रमत संयत अप्रमत संयत क्षमिक है। उपशम श्रेणी में तो उपशम भाव है, शपक में और सयोग में क्षयिक भाव। अब ये तो गुण स्थानों में भाव बेटा, अब मार्गणा में बताते। तो गुणस्थान नारकियों में क्या कहेंगे, जैसे गुणस्थानों के भाव बताए वैसे उनके हो गए। नारकियों में मिथ्या दृष्टि को औदयिक भाव है, सासाधन को पारिणामिक भाव, जैसे वैसे दिक्कत। अब इंद्रियों की मार्गणा की अपेक्षा से एक इंद्रिय विकलेन्द्रियों को तो औदयिक भाव है, पंचेन्द्रियों में मिथ्या दृष्टि अयोगी तक तो गुणस्थान के वत भाव है। अभी उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे तो मिथ्या दृष्टि को भी, ये जो अज्ञान रूप है वो तो क्षयक्षमिक भाव भी वहां पर, यहाँ मुख्यतः इन्होंने ये गुणस्थानों पर घटित करना था। गुणस्थान तो किसी कर्म के उदय रूप से होता है, या तो दर्शन हो या चारित्र, उसके लिए वो औदयिक भाव आदि घटित किया उन्होंने। इस तरह से हरेक मार्गणा पर उन्होंने घटित किया। अब अल्प भूतों का वर्णन करते हैं, उसमें भी ये सबसे कम कौन से, तो उपशम श्रेणी वाले हमने देखे ना 299 देखे, प्रवेश करने की अपेक्षा वो तो और भी कम हो जाएगी। इन्हें प्रत्येक गुणस्थान की जो हमने संख्या देखी थी उस पर वो घटित करना है अल्प भूत, वो भी अनेक हरेक मार्गणा में बताया। आपका प्रश्न था ना उस दिन, देव कम है कि नर्क कम है, देखो यहाँ लिखते हैं। उन्होंने नरक गति में केवल गुणस्थानों में अल्पबोध को लगाया, नरक और देव का अल्पबोध को नहीं बनाया। देखो यहाँ जो लिखा है, गति अनुवाद से नरक गति में नारकी जीव में सबसे कम सासाधन समय दृष्टि नारकियों, जो उससे संख्यात गुणे समय मिथ्या दृष्टि, उनसे असंख्यात गुणे चौथे गुणस्थान गति, और उनसे भी असंख्यात गुणे मिथ्या दृष्टि। तिर्यंच में सबसे थोड़े संयता संयत, और बाकी तो आगे के उनमें तो असंयत है, वो तो अनंत गुणा पे ही। मनुष्यों में उपशम श्रेणी वाले सबसे कम है, फिर प्रमत्त वगैरह वाले हमने देखे किसकी किसकी क्या क्या संख्या होती है उस तरह से, यानी वो तो संख्यात गुणा संहिता संहित है, उससे साधन संख्यात गुणा है, उससे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुणा है, उससे असंयत संख्यात गुणा है, देवगति में फिर नारकी के जैसे साधन वाले सबसे कम है, फिर तीसरे वाले फिर चौथे वाले फिर मिथ्या दृष्टि। अभी काय मार्गणा की अपेक्षा बताते हैं, एक्चुअली गुणस्थान का भेद नहीं है, गुणस्थानों की अपेक्षा काय मार्गणा में भेद नहीं है क्योंकि सारे मिथ्या दृष्टि है, परंतु उसमें संख्या देखनी है तो तेजस का ही सबसे कम अग्नि का, फिर उससे ज्यादा है पृथ्वी का ही, उनसे ज्यादा है अप का ही, उनसे ज्यादा है वायु का ही, और उनसे अनंत गुणे हैं वनस्पति के क्योंकि उसमें निगोद है। अब ऐसे कौन से साधारण प्रत्येक तो असंख्या ही होते हैं, वनस्पति का ही जब कहेंगे तो सब सब आ गए, साधारण भी आए प्रत्येक भी आ गए सूक्ष्म भी आए बादर भी आए पर्याप्त भी आए अपर्याप्त, वनस्पति का ही कहने से सब इंक्लूड हो गए, इसलिए वो नहीं
वनस्पति
सब लेना ना, अकेले वनस्पति कायिक लेंगे तो सभी आ गए, केवल साधारण कहना है तो अलग से बताएंगे साधारण वनस्पति का। तो कहते हैं ऐसे इन आठ अनुयोगों के द्वारा वस्तु का अधिगम होता है,
अधिगम
उसका उदाहरण बताया अभी जितना बताया और हमने जितना जितना नहीं बताया वो सब, कि जीव नामक वस्तु को गुणस्थान और मार्गणा के द्वारा कहा, ये हमने जीव पदार्थ पर गुणस्थान उसके गुणस्थान और मार्गणा स्थान पर ये आठ अनुयोग द्वार लगा के देखे। अब यथा ऐसे ही यथासंभव आगम के अनुसार सर्व वस्तुओं पर लगाना, सर्व वस्तुएं भी जीव हमको कोई आश्रव तत्व लगाना है, सम्यक दर्शन लगाना है, शुद्ध ज्ञान पर लगाना है, किसी कर्म पर लगाना है, तो ये सभी अनुयोग द्वार उस पर रखे। हमने अभी तक धौला में और जयधौला में जो कुछ पढ़ा है हर जगह ऐसे वो सभी आठों अनुयोग द्वार और भी इसमें और गहरी चर्चा उसमें, यही है और कुछ नहीं है उसमें, ये तो बहुत हमने तो बीच बीच में पढ़ा है, इसमें भी बहुत विस्तार से दिया है, मतलब इनको डायरेक्ट बताया है वो क्यों होता है उसका कुछ कारण मीमांसा नहीं है इसमें, फिर भी हमने उदाहरण के तौर पर बहुत सारा देख लिया है। तो ये तो हमने इसमें भी पढ़ा था कि सत क्यों कहना कि नास्तिकवादी वस्तु को सर्वथा अभाव रूप ही मानते हैं, सब शून्य ऐसा ही कहते हैं, या ऐसा भी कहते बस ब्रह्म ही सत है बाकी सब माया है मिथ्या है कुछ है ही नहीं है, तो कहते उसका निराकरण होता है। कोई कहते वस्तु सर्वथा एक अभेद है तो वो भेद कहने से उसके भेद गिनने से संख्या गिनते हैं ना तो उसका निराकरण हो जाता है। कोई कहते कि वस्तु के प्रदेश ही नहीं है उसका कोई विस्तार ही नहीं है तो उसका क्षेत्र कहने से वो रूल आउट हो जाता है। ये हमने इसमें पढ़ा था ना वस्तु को क्रिया रहित ही मानने वाले इसलिए क्षेत्र स्पर्शन भी बता देते हैं, एक वस्तु का सर्वथा कदाचित प्रलय होता माने हैं क्षणिक ही मानते हैं, ये काल का नियम से उसका निषेध हो जाता है, ये हमने सब पढ़े थे यही सेम वाक्य रचना उसमें भी दी है, मेरे ख्याल से वो सर्वार्थ सिद्धि में से ही लिया है। हाँ ठीक है हाँ। तो ये तो हमने पढ़ा था, तो इतना जो सत आदि देखने के बाद वो सम्यक ज्ञान विचारने योग्य वो भी हमने सूत्र पढ़ा था मति शुद्ध अवधि वगैरह संबंध उसकी तो बात अपनी चली थी, ये पहले कुछ विषय बताना रह गया था इसलिए उसको हमने देख लिया, अब उसमें से पढ़ेंगे।
अभी हम पेज नंबर 46 पर आए थे, आपके गुजराती में देख लेना भाई 39। ओके, यहाँ जो आखिरी प्रश्न था कि प्रश्न पूछ रहे हैं, आप सम्यक ज्ञान का फल अधिगम कहते हो यानी ज्ञान कहते हो, किंतु वह अधिगम तो ज्ञान ही है, इसलिए ऐसा मालूम होता है कि सम्यक ज्ञान का कुछ फल नहीं होता। यानी अभी अधिगम यानी ज्ञान है और वो ज्ञान होता है तो फिर सम्यक ज्ञान करने की क्या आवश्यकता है? ख्याल में तो उसका फल तो कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान का फल अधिगम कहते हो, यानी सम्यक ज्ञान होगा तो उसका फल क्या है? तो ज्ञान है, किंतु वह अधिगम यानी वो ज्ञान तो ज्ञान ही है और अन्यथा कुछ नहीं है, इसलिए फिर सम्यक ज्ञान करने की जरूरत क्या है? सम्यक ज्ञान का फल कुछ भी नहीं होता है ऐसा बता रहे हैं। तो उत्तर दे रहे हैं, सम्यक ज्ञान का फल आनंद, संतोष, उपेक्षा यानी राग द्वेष रहितता और अज्ञान का नाश है। इससे यह सिद्ध होता है, ये सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ 334 में आया है। ये वचनिका है, सर्वार्थ सिद्धि वचनिका पढ़ रही है और सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र अलग है। क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है वो मेरे हिसाब से 100 पेज भी नहीं हुए, यहाँ तो 334 नंबर है पेज। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्व से ही होता है, पर पदार्थ से नहीं होता। ये बात उन्होंने अभी तक इतना सब डिस्कशन करने के बाद सिद्ध की है।
पता है ना प्रमाण का फल क्या है? प्रमाण का फल पूछा ना, सम्य ज्ञान का, सम्य ज्ञान प्रमाण है, तो प्रमाण का फल क्या होता है? तो कहते हैं प्रमाण तो परोक्ष भी होता है प्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष हो या प्रत्यक्ष हो उसका फल क्या है? क्योंकि अन्य मतियों ने प्रमाण किसी अन्य चीज को माना था, किसको माना था? इंद्रियों के और पदार्थों के सन्निकर्ष कॉन्टेक्ट को उन्होंने प्रमाण माना था, परंतु सच में प्रमाण का फल क्या होता है? तो अज्ञान का नाश, यही प्रमाण का फल है, एक बात। दूसरी बात, पेय पदार्थों में त्याग भाव, प्रमाण यानी ज्ञान, ज्ञान ने जाना, ज्ञान ने जाना सामने खड़ा है तो क्या करना है? उसका फल क्या ज्ञान का? खड्डे में गिरना। ज्ञान के द्वारा हमें पता चला कि ये बात अपने लिए धोखा है या वो टालने जैसी है, तो उसको टालना ये भी उसका कार्य हुआ ना, वो उसका फल मिल गया। हेय का नहीं, हेय में त्याग भाव, हेय पदार्थों में त्याग भाव होना, ये प्रमाण का फल है। नहीं समझे? अभी क्या क्या पढ़ा हमने? आनंद, उपेक्षा, अज्ञान का नाश, ये तो बताया ही है। मैं अभी इसमें से पढ़ रही हूँ अर्थ प्रकाशिका में, तो उसमें तो बताया है कि प्रमाण का फल अज्ञान का नाश, हेय में त्याग भाव,
बरोबर वही वही राग द्वेष ही है ना,
वो हेय अपना वो नहीं,
ना 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 राग द्वेष भी ही है ना,
समता भाव में आ जाएगा। देखो, एक है अज्ञान का भाव, दूसरा है हेय में त्याग भाव, तीसरा उपादेय में प्रवृत्ति, और चौथा है राग द्वेष के अभाव रूप परम उपेक्षा भाव। देख, हेय में हेय पना है ना, उसमें तो कुछ शुभाशुभ भाव है वहां पर, परंतु ये कैसा है अभी? परम उपेक्षा से, जिसको मैं साम्य भाव, राग द्वेष रहित अवस्था, राग द्वेष के अभाव रूप इन्हें राग देश के अभाव रूप परम वितरकता की प्राप्ति होगी। ये किसका फल है? प्रमाण का फल है। यानी समता भाव, ये सभी क्या है? प्रमाण के फल है। ये जानने से क्या होता है? कुछ करने से होगा, ये कहते हैं ना, ये सब जानने से। उपादेय में प्रवृत्ति रूप, आप आगे पढ़ेंगे।
यहाँ पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्व से ही होता है, पर पदार्थ से नहीं होता। अब सूत्र नंबर 9 और 10 का सिद्धांत। 9वें सूत्र में कथित 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है।
तो प्रमाण है ना, क्योंकि प्रमाणे लिखा था पहले गुजराती में, वो प्रमाण करना है। आपने क्या लिखा? प्रमाण के प्रमाणे। पीछे कहाँ जा रहे हो? वही तो वो नहीं, मैं तो 9 और 10 के सिद्धांत में देख रही हूँ। सूत्र में बराबर है, तत्प्रमाणे सूत्र बराबर है। अब जो 9 और 10 में सिद्धांत जहाँ लिखा है ना, प्रमाण लिखा है, प्रमाण 6, पुरानी जो एडिशन है उसमें प्रमाणे 6 ऐसा लिखा है, प्रमाण से बराबर है। विवेक बेन, आपके उसमें प्रमाणे था क्या? हाँ, मेरे में भी था।
हाँ, हो गया। क्या कह रहे हैं? 9वें सूत्र में कथित 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, परंतु वह ठीक नहीं है, यानी सही नहीं है, सत्य नहीं है। जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है, वह अपने सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने को सम्यक होने का निर्णय कर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? देखो, अपनी भाषा में समझना है तो जिसे सम्यक दर्शन हुआ है उसको दूसरों से पूछना नहीं पड़ता कि मुझे सम्यक ज्ञान हुआ है क्या नहीं। ख्याल में? यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो, जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है, वह अपने सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने को सम्यक तो होने का निर्णय कर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान है, क्योंकि वह प्रमाण ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान है ना, इसीलिए उसको प्रमाण ज्ञान कहा गया। परोक्ष प्रमाण के भेद, ये आद्य परोक्षम। यहाँ देखो, आद्य कहने का अर्थ क्या है? पहले दो। तो पहले दो कौन? पहले पूरे 5 कौन से देखे थे हमने? हाँ, बोलो बोलो। तो उसमें से पहले दो जो है, तो पहले दो कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो लिखते देखो अर्थ में, आद्य यानी प्रारंभ के दो अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्षम। परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि मति ज्ञान भी सम्यक है, सुनना, सम्यक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान प्रमाण है। तो आद्य यानी पहले दो जो है वे कैसे हैं? प्रमाण है, लेकिन परोक्ष प्रमाण। अभी उनको परोक्ष क्यों कहना, ये बात भी अभी बताएंगे। यहाँ प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान के भेदों में से प्रारंभ के दो अर्थात मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। यह परोक्ष प्रमाण है, यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, इसलिए उन्हें संशयवान या भूल युक्त नहीं मान लेना चाहिए। यानी उनका ज्ञान ये बराबर है कि नहीं, सही है कि नहीं, ऐसा कोई संशय नहीं होता या भूल युक्त नहीं है। यानी उसमें कुछ अभी भूल बाकी है ऐसा वह ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वे यानी कौन, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सर्वथा। सर्वथा का अर्थ क्या लेना बहन? अरविंद भाई आप बताएंगे? हमने ये पूछा कि 8:30 में 5 कम है, सबका ध्यान है क्या नहीं, ऐसा हमने पूछा। आपका क्या जवाब है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा देखो, बोला था इसके पीछे मत लगो, नहीं सुनने का है, सुनने का है। मस्त नींद आ गई सबको। हाँ सुनो, अभी 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 प्लीज जरा ध्यान देना। वह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, इसलिए उन्हें संशयवान या भूल युक्त नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वे सर्वथा सच्चे ही है। इसमें सर्वथा शब्द का अर्थ चाहिए। अरे आपको नहीं पूछा है, मैं बहुत इस बारे में थोड़ा सा, जिसको पूछा जाए वही बोले। आपकी दोस्ती नीचे जाके एक घंटा वहां कौन सा क्लास, चाटे क्लास चलाओ, वांधा नहीं है। यहां तो जिसको पूछा जाए वही बोलेगा। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो, आप बोलना चाहते हैं? हाँ आप क्या कहते हैं, अभी बोल रहे थे ना आप? हाँ ये कालवाचक है, ख्याल में है? ये क्या कह रहे हैं, भूल वक्त नहीं मान लेना, क्योंकि वे यानी ये दोनों प्रमाण ज्ञान सर्वथा यानी तीनों ही कालों में सच्चे ही है। यानी आज के दिन सच्चा है, कल के दिन खोटा है, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या बताया, काल हमेशा हमेशा हमेशा, इन द सेंस कालवाचक जो होता है। हाँ एकांत कहाँ आया? हाँ त्रिकाल, मैं बोला एकांत बोल रहे के पिता उनकी।
हाँ सर, सर्व काल लिखा है, एक सर्व होता है, एक सर्वत्र होता है, एक सर्वथा होता है।
सर्वत्र सर्वत्र जो होता है वो क्षेत्र की अपेक्षा,
सर्वदा होता तो
सर्वदा वो काल के हिसाब से।
हाँ
ये भाव के हिसाब से
सर्वत्र 100% सच्चे।
सर्वथा यानी तो आपने हमेशा बताया, तो हमेशा किस में लेना, 100% में लेना कि काल में लेना, या वो गलत है ऐसा लेना, क्या लेना? मैं इनसे बात करूं, यहां तो उसका अर्थ ऐसा ही होगा। देखो आगे, हाँ बोलो बोलो।
हाँ
यानी ये आपने जो सर्वथा यानी कभी भी हमेशा, और तद्धन का अर्थ होता है कि निश्चय, मतलब बिल्कुल निश्चय से ऐसा ही है। तो ये कभी निश्चय से ऐसा ही है, कब है, आज के दिन या तो सबके कभी, मैंने ये अर्थ निकाला। यहां तो मैं, आप जो कहते हैं सर्वदा, वो सर्वदा हिंदी शब्द है और ये भी सर्वदा हिंदी शब्द है, फिर भी यहां तो तीन काल ही लगेगा। उनके उपयोग के समय इंद्रिय या मन निमित्त होते हैं, इसलिए पर अपेक्षा के कारण उन्हें परोक्ष कहा है। ये कैसा बताया, स्व अपेक्षा से पांचों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष है। यानी यहाँ तो और कुछ है क्या गुजराती में? बात तो ऐसी है कि ये जब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से पर पदार्थों को जब जाना जाता है उपयोग लगता है तब तो उसको मन या निमित्त इंद्रिय या निमित्त मन निमित्त होते हैं, लेकिन जब स्व आत्मा को जान रहा है कौन मति ज्ञान या श्रुति ज्ञान उस समय इन इंद्रियों की कोई वहां आवश्यकता नहीं गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष तो उसे अनुभव प्रत्यक्ष कहेंगे अथवा जब पर पदार्थों को जान रहे हैं तो उनको परोक्ष यहां तो लिख रहे देखो उनके उपयोग के समय इंद्रिया मन निमित्त होते हैं इसलिए पर अपेक्षा के कारण उन्हें परोक्ष कहा लेकिन स्व अपेक्षा से पांचों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष है। अभी हम यही रुकते हैं बाकी की बात कल। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी वस्तु नमो।